നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. दुर्योधन को भगवान ने भी समझाया, विदुर जी ने भी समझाया, धृतराष्ट्र ने भी कहा और गांधारी ने भी कहा. दुर्योधन ने किसी की भी बात नहीं मानी और सभा भवन को छोड़कर चला गया. सभा भवन के बाहर जाने के बाद दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन एक तरफ बैठकर विचार विमर्श करने लगे कि ये जो कृष्ण है, ये राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमको कैद करवाना चाहता है, तो हम लोग पहले ही कृष्ण को क्यों नहीं कैद कर ले. यदि कृष्ण को कैद कर लेंगे तो पांडवों के ऊपर हमारी विजय तो एकदम सुगम है. उधर पांडवों को पता चलेगा कि कृष्ण को कैद कर लिया गया है तो उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और पांडव किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें, घबरा जाएंगे. ये बड़ा अच्छा मौका है. कृष्ण यहां हस्तिनापुर आया हुआ है, हमारे राज्य के अंदर आया हुआ है. अभी इसको चुपचाप जाकर अकस्मात इसको पकड़कर कैद खाने में डाल दें. दूर बैठा हुआ कृष्ण का मित्र सात्यकी, उसके अंदर एक विद्या थी. वो आपस में कोई बातचीत में इशारा करे, वो इशारा को समझ लेता था कि इसके मन में क्या बात है. वो दूर से इन चारों को बात करते देख रहा था. उसके मन में आई, अच्छा ये कृष्ण को कैद करना चाहते हैं. तो वह कृतवर्मा से बोला सात्यकी, कृतवर्मन शीघ्र सेना सजाओ, मैं अभी कृष्ण को जाकर के ये कुविचार की सूचना देता हूं. तुम कवच धारण करो, शस्त्र धारण करो, सेना को व्यूह रचना खड़ी करो और सभा भवन के पास अपनी सेना को चौकन्ना कर दो. उसके बाद सात्यकी जैसे सिंह गुफा में जाता है, उसी प्रकार सभा में जाकर भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत ही गुप्त रूप से कहना चालू किया, हे कृष्ण, आप इस सभा के अंदर संधि के प्रस्ताव की बात करते हैं और इधर दुर्योधन आदि आपको कैदखाने में डालने की सोच रहे हैं. भगवान कृष्ण मुस्कुराए. यद्यपि सात्यकी की बात कृष्ण के अलावा किसी ने नहीं सुनी, फिर भी कृष्ण ने मुस्कुरा करके धृतराष्ट्र और विदुर से कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, हे परम नीतिज्ञ विदुर, सत्पुरुषों की दृष्टि में दूत को कैद करना धर्म अर्थ काम के सर्वथा विरुद्ध है, लेकिन तुम्हारे ये दुर्योधन आदि वही काम करने जा रहे हैं जिसका शास्त्र निषेध करता है. बड़ा आश्चर्य है, ये अपना मनोरथ पूरा कर लेंगे. बड़े क्षुद्र हृदय है, कृष्ण को कैद करेंगे. बालक जलती हुई आग को कपड़े में लपेटेगा, ऐसे ये कृष्ण को कैद करेंगे. सात्यकी की बातें सुनकर, कृष्ण की बातें सुनकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज ये क्या सुन रहे हैं, आपके सभी पुत्र क्या मरने को इतने उतावले हो रहे, केवल शरीर से प्राण निकलना ही निकलना नहीं होता है, मनुष्य का अपयश मृत्यु का दूसरा रूप होता है। महाराज ये लोग आपस में मिलकर कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार करके कैद करने का विचार कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि आग के पास जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराकर धृतराष्ट्र से कहने लगे, महाराज यदि ये क्रोध में भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो फिर आप आज्ञा दे दीजिए, फिर देखेंगे मुझे कैसे कैद करते हैं, आप छूट दे दीजिए। महाराज मैं अभी इनको बांध लेता हूं और इन सबको बांध करके पांडवों के हवाले कर दूं तो मेरा कोई अनुचित काम नहीं होगा, मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देता हूं कि दुर्योधन की जैसी इच्छा है वैसी पूरा करके देख लो, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह रह न जाए, मुझे पकड़ लो। महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर ये दुर्योधन कब सीखेगा, ये क्षुद्र बुद्धि वाला दुर्योधन कितना बड़ा पाप करने जा रहा है, बुलाओ उसको, क्या पता मेरे समझाने से कुछ समझ भी जाए। विदुर जी की इच्छा नहीं थी दुर्योधन को बुलाने की, पर धृतराष्ट्र की आज्ञा थी, सभा में ले आए। उस समय दुर्योधन के भाई, दुर्योधन के और भी कई पक्षपाती लोग, राजा लोग साथ साथ आए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, अरे कुटिल दुर्योधन, तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर इतना भयंकर पाप करने पर उतारू हो गया, याद रख तुझ जैसा मूड कुलकलंक पुरुष जो कुछ करने का विचार करेगा वो कभी पूरा नहीं होगा, उससे सत्पुरुष तेरी निंदा करेंगे। कहते तो है तू अपने पापी साथियों से मिलकर श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है, अरे मूर्ख इनको इंद्र भी कैद नहीं कर सकते, तेरा ये दुस्साहस हुआ कैसे, जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे पकड़ सकता है, तुझे श्री केशव का कोई पता नहीं है, जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता, ऐसे ही कृष्ण को कोई बल से नहीं बांध सकता। विदुर जी बोले, दुर्योधन जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा एक बार नरकासुर ने भी किया था, कई दानवों ने मिलकर के विचार किया था कृष्ण को कैद कर ले, कृष्ण को बांध ले, कृष्ण को एकांत में पटक दे, क्या तुमने उनकी बातें नहीं सुनी। दुर्योधन तुम्हें पता नहीं है, छोटे से थे बाल्यावस्था में पूतना को मारा, बकासुर को मारा, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, अरिष्टासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, चाणूर केशी और कंस को मारा, जरासंध दंत वक्त शिशुपाल बाणासुर अनेक अनेक राजाओं को नीचा दिखा चुके हैं, वरुण अग्नि और इंद्र भी इनसे हार मान चुके हैं, मधु और कैटव हयग्रीव आदि अनेकों देवताओं को पछाड़ चुके हैं। मूर्ख ये संपूर्ण प्रवृत्तियों के प्रेरक किंतु स्वयं किसी की भी प्रेरणा से कोई काम नहीं करते, सकल पुरुषार्थों के कारण ये जो कुछ करना चाहें वही काम अनायास कर सकते हैं, इनके प्रभाव को तुम जानते नहीं और इनका तिरस्कार करने का साहस करने लगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होते होते भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूं और मैं इनको दबा दूंगा और इनको कैद खाने में डाल दूंगा, याद रख दुर्योधन, संसार की सारी शक्तियां तो मेरे अंदर मौजूद हैं, मेरे अंदर सारे पांडव वृष्णि अंधक वंशी यादव सब यही हैं, यही हैं, आदित्य रुद्र वसु सारे ऋषि मुनि सब मेरे अंदर मौजूद हैं। यदि तुझे प्रमाण की आवश्यकता है तो देख, भगवान जोर से अट्टहास किए, हंसे, बस तुरंत उनके सब अंगों में बिजली की सी कांति वाले अंगुष्ठाकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा जी, उनके वक्षस्थल पर रुद्र, भुजाओं में लोकपाल, मुख में अग्नि, नेत्र में आदित्य, साध्य वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मरुदगण, राक्षस, गंधर्व, यक्ष सब के सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़े। उनकी दोनों भुजाओं में से एक भुजा से बलभद्र, एक भुजा से अर्जुन प्रकट हुआ। अर्जुन को यूं देखता है दुर्योधन, हलधर बलराम को देखा, थोड़ी देर में कृष्ण के शरीर में भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को देखा जो उनके पीठ भाग में थे, प्रद्युम्न आदि अंधक और विष्णुवंशी यादव शस्त्रास्त्र लिए हुए उनके शरीर में से प्रकट हो रहे थे। कृष्ण की अनेक भुजाएं दिखाई दी, प्रत्येक भुजा में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सारंग, धनुष, हल और नंदक खड्ग ये सब थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्णरंध्र में बड़ी भीषण आग की लपटें निकल रही थी और रोम कूपों से सूर्य की सी किरणें निकल रही थी। भगवान के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र बंद कर लिए, अपने आप को सिकोड़ लिया और वे इधर उधर भागने की सोचने लगे, घबरा गए, पसीना पसीना छूट गया। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और आए हुए ऋषि लोग बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर सब मुग्ध हो गए। सभा भवन में भगवान का ये अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं ने जोर जोर से दुंदुभियां बजाई, आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई। धृतराष्ट्र ने कहा, हे कमल नयन, सारे संसार के हितकर्ता आप हैं, आप हमारे पर कृपा कीजिए, मेरी प्रार्थना है। मैंने आज तक जीवन में कुछ नहीं देखा, बस केवल आपका ये दिव्य नेत्र मुझे प्राप्त हो जाए, मैं केवल आपके दर्शन करना चाहता हूं, फिर वापिस आप नेत्र की ज्योति छीन लेना, आपको देखने के बाद मैं किसी और को देखना नहीं चाहता हूं। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे गुरुनंदन धृतराष्ट्र, तुम्हारे अदृश्य रूप से दो नेत्र हो जाएंगे। जब सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए, बड़ा आश्चर्य हुआ, कृष्ण की स्तुति करने लग गए, पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली मच गई, सब राजा भौचक्के से रह गए। फिर भगवान ने उस रूप को तथा दिव्य अद्भुत और चित्र विचित्र माया को समेट लिया और इसके पश्चात ऋषियों की आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े भगवान सभा भवन से चल दिए और उनके चलते ही नारद आदि ऋषि भी अंतरित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण को जाते देखकर राजाओं के सहित सब कौरव पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन भगवान ने उन राजाओं की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए ध्यान नहीं दिया कि इतनी देर तक तुम दुर्योधन के पीछे थे, अब मेरे पीछे आए। इतने ही में दारुक उनका दिव्य रथ सजा कर ले आया। भगवान उस रथ में विराजमान हो गए, उनके साथ कृतवर्मा भी चढ़ गया रथ में। धृतराष्ट्र ने कहा, हे जनार्दन, पुत्रों पर मेरा कितना बस चलता है ये आपने प्रत्यक्ष देख लिया है। मैं तो चाहता हूं किसी प्रकार कौरव पांडव मेल हो जाए, और इसके लिए प्रयत्न भी करता हूं, पर मेरी दशा आपको पता ही है। और कुछ हो न हो आप मेरे पर संदेह मत करना। विदा होते होते श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और बाल्यीक से कहा, इस समय कौरवों के सभा में जो कुछ हुआ है वो आपने प्रत्यक्ष देख लिया है, सब आपके सामने है कि मंद बुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनक फुनक कर सभा से चला गया था। महाराज, धृतराष्ट्र अपने आप को असमर्थ बताते हैं, अतः अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूं और युधिष्ठिर के पास जाता हूं। इस प्रकार आज्ञा लेकर भगवान रथ में चढ़कर चलने लगे तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, विकर्ण उनके पीछे पीछे दूर तक गए, और उसके बाद सबके देखते देखते भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने उनके स्थान पर गए। देशमपायन जी कहते हैं, भगवान बड़े प्रेम से, फुर्ती से अपनी बुआ कुंती के घर जाकर उनका चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, तथा कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ था वो सब संक्षेप में सुना दिया। भगवान ने कहा, बुआ जी, मैंने और ऋषियों ने तरह तरह की युक्तियों से अनेकों मानने योग्य बातें कही, किंतु दुर्योधन ने तो किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दुर्योधन के अनुयायी इन सब वीरों के सिर पर काल मंडरा रहा है। मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं, क्योंकि अब मुझे जल्दी ही पांडवों के पास जाना है। हे बुआ जी, आपकी ओर से पांडवों को क्या संदेश देना है? कुंती ने कहा, केशव, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, बड़ी हानि हो रही है, सो अब तुम इसे वृथा मत खोना। बेटा, क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतः इन्हें अपने बाहुबल से आजीविका करनी चाहिए। किसी काल में कुबेर ने राजा मुचकुंद को सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुचकुंद ने स्वीकार नहीं किया और उसने अपने बाहुबल से ही जीत कर पृथ्वी को प्राप्त किया। इसलिए क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर उनके समान तुम शासन करो। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है उसका चतुर्थांश राजा को मिलता है। यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है, और अधर्म करता है तो नरकों में जाता है। यदि वह दंड नीति का ठीक ठीक उपयोग करे तो चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से रुक जाते हैं। वास्तव में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों का कारण राजा ही होता है। इस समय अपनी बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो, उसे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने और तुम्हारे पिता मैंने भी कभी नहीं चाहा था। मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, महत्ता, बल, ओझ की कामना करती रहती हूं। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह राज्य प्राप्त करके किसी को दान से, किसी को बल से, किसी को मिष्ट भाषण से अपने अधीन करे। मिष्ट भाषण माने बोली की मधुरता। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से रहे, क्षत्रिय प्रजा पालन करे, वैश्य धन संग्रह करे, शूद्र सबकी सेवा करे। तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति निषिद्ध है, कृषि करना उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा को भय से बचाने वाले। बाहुबली तुम्हारी आजीविका का साधन है। तुम्हारे इस पैतृक अंश को शत्रुओं ने हड़प लिया है। तुम्हें साम दान दंड भेद या और नीति से इसका उद्धार करना चाहिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम्हारा जैसे पुत्र की मां होकर मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए जी रही हूं। युधिष्ठिर उठो, क्षत्र धर्म का पालन करो। हे कृष्ण, मैंने प्राचीन काल का एक इतिहास सुना है। विदुला नाम की एक माता अपने पुत्र संजय को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। विदुला क्षत्राणी थी, तेजस्विनी थी, कुलीना थी, संयमशीला थी, दीर्घदर्शिनी थी। राजाओं की सभा में उसकी अच्छी ख्याति थी, शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था। एक बार उसका औरस पुत्र सिंधुराज से हार कर बड़ी दीन अवस्था में पड़ा हुआ अपने महल में आया, मां के पास आया, मां के आंचल में आकर रोता रहा और कहता रहा, बड़ा अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। उस समय उसको फटकारते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा पुत्र है? काहे का मेरा पुत्र? शत्रुओं को आनंद को बढ़ाने वाला? जरा भी तेरे में स्वाभिमान था नहीं? तू क्षत्रियो में नहीं गिना जा सकता जो अपने प्राणों से मुंह करता है और शत्रुओं को जीतने का मौका देता है। ये लक्षण नपुंसकों के से हैं। प्राण देते हुए निराश होकर आ गया, यहां आकर मेरे पास बोलता है कि मेरे प्राण बच गए। प्राणों को बचाकर गौरव को नष्ट किया, अपने मन को तुमने भय में डाल दिया। कायर, खड़ा हो। हार खाना मनुष्य का काम नहीं होता, क्षत्रिय का काम नहीं होता। वो दो काम करना जानता है, युद्ध करना या उसमें मरना। तू अपना मान खो करके शत्रुओं को खुश कर रहा है, तेरी मां के हृदय में पीड़ा पहुंचा रहा है। देख, प्राण भले ही चले जाए, पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बाज निशंक होकर आकाश में उड़ता रहता है, ऐसे ही वीर पुरुष रणभूमि में निर्भय होकर विचरण करते हैं। तुम ऐसे आकर पड़े हो जैसे तुम्हारे पर कोई बिजली आकर गिर गई हो, जैसे तुम कोई मुर्दा हो, खड़े हो। शत्रुओं से हार खाकर पड़ा मत रहे। तो सामदान और भेद रूप मध्यम अधम और नीच उपायों का आश्रय मत ले, युद्ध कर। उसी का आश्रय लेकर शत्रु के सामने डटकर गर्जना कर। वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का मानवोचित पराक्रम दिखाकर अपने धर्म से उर्ण होता है। वह अपनी निंदा नहीं करता। विद्वान पुरुष फल मिले न मिले इसके लिए चिंता नहीं करता, वह तो निरंतर पुरुषार्थ साधन में लगा रहता है। उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं होती। तू या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर जय लाभ कर, और नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो जा। धर्म को पीठ दिखाकर तू यहां आया, जी रहा। अरे नपुंसक, इस तरह तो तेरे इष्ट पूर्त पुण्य सुयश सब कुछ मिट्टी में मिल जाएंगे। तेरे भोग का साधन जो राज्य था वो भी नष्ट हो जाएगा। फिर तो किस लिए जी रहा है? दान तप सत्य विद्या और धन संग्रह का प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का सुयश नहीं गाया जाता वह उसकी माता की विष्ठा के समान है, पुत्र नहीं है। सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या तप ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है। अब तो भिक्षा मांग करके निर्वाह करेगा, अरे मूर्ख, अकीर्ति कारिणी दुखदायिनी कायरों की सी ये प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर क्यों आई? मालूम होता है पुत्र रूप से मैंने कलयुग को जन्म दिया है, तुझमें जरा भी स्वाभिमान नहीं, जरा भी अपने पुरुषार्थ के लिए उत्साह नहीं। तुझे देखकर शत्रुओं को कितना सुख हो रहा होगा। कोई भी स्त्री तुम्हारे जैसे कुपुत्र को कभी पैदा न करे। जो अपने हृदय को लोहे के समान करके राज्य और धनादि की खोज करता है और शत्रुओं के सामने डटा रहता है वो पुरुष है। जो स्त्रियों की तरह किसी प्रकार अपना पेट पालता है, जान बचाता है, वो पुरुष है? वो का पुरुष है? पुरुष नहीं है। यदि शूरवीर तेजस्वी बलि और सिंह के समान पराक्रम करने वाला राजा वीरगति प्राप्त होता है तो सारे राज्य में गौरव बढ़ता है। प्रजा गौरव के साथ कहती है हमारे महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। जा किसी पर्वत के किले में जाकर रह, शत्रु के ऊपर आपत्काल की प्रतीक्षा कर। संसार में कोई अजर अमर नहीं है। बेटा तेरा नाम तो संजय है किंतु तेरे अंदर कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। संजय जिसकी हरदम अच्छी तरह से जीत होती है लेकिन तू तो हारा हुआ है। तू छोटा सा बालक था, एक बुद्धिमान ज्योतिषी ब्राह्मण आया, उसने तेरा हाथ देकर कहा था कि एक बार बड़ी भारी विपत्ति में पड़ेगा और फिर इसकी बड़ी भारी उन्नति होगी। आज उस बात का पूरा करने का समय आया है। मैं तुझे कह रही हूं फिर भी कहती रहूंगी, शंबर मुनि का कथन है, जहां आज भोजन नहीं न कल के लिए कोई प्रबंध है, ऐसी चिंता जहां रहती है उससे बढ़कर कोई दुर्दशा नहीं हो सकती। ऐसी चिंता रहे, अभी भोजन नहीं है, कल के लिए भी कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन यदि मन में चिंता है कि क्या खाएंगे तो इससे बढ़कर कोई बुरी दशा नहीं, ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए। जब तू देखेगा कि आजीविका के न रहने से तेरे काम काज करने वाले दास सेवक आचार्य ऋत्विक और पुरोहित तुझे छोड़कर चले गए तो तेरा ये जीवन किस काम का रहेगा रे? पहले मैंने या मेरे पति ने कभी किसी ब्राह्मण से नहीं नहीं कहा, अब यदि मुझे नहीं कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट जाएगा। हम सदा दूसरों को आश्रय देते रहे, दूसरों की आज्ञा सुनने की हमें आदत नहीं। यदि मुझे किसी दूसरे के आश्रय जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। देख यदि तूने जीवन का लोभ न किया होता तो तेरे सभी शत्रु परास्त हो गए होते। तू युवा है, विद्या कुल और रूप से संपन्न है, यदि तुझ जैसा यशस्वी और जगत विख्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य भार को न उठाए तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूं। यदि मैं तुझे शत्रु के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बनाते या उसके पीछे पीछे चलती देखूंगी तो मेरे हृदय को कभी शांति नहीं मिलेगी। तू जिस पिता का पुत्र है उसका गौरव समझ। तुम्हारे पिता कभी शत्रु के सामने हारे नहीं। तुझे शत्रु का सेवक होकर जीना किसी प्रकार शोभा नहीं देता है। पुत्र कहने लगा, मां तुम वीरों की सी बुद्धि वाली बात तो करती हो लेकिन तुम बड़ी कठोर हो, बड़ी क्रोध वाली हो, तुम्हारा हृदय तो लोहे से भी बढ़कर है। क्षत्रिय का धर्म कितना कठिन होता है, तुम मेरी मां होकर मुझे मृत्यु की तरफ क्यों धकेलती हो, युद्ध के लिए क्यों उत्साहित करती हो? मैं तो तुम्हारा इकलौता बेटा हूं, तुमने मेरा बहुत लाड प्यार किया, फिर तुम मुझे बार बार क्यों कहती हो कि तुम मर जाओ तो कोई परवाह नहीं, ऐसा क्यों बोलती हो? जब तुम मुझे देखोगी नहीं, मैं इस संसार से चला जाऊंगा, तब तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? फिर प्रिय पुत्र संग्राम में काम आ जाएगा, तब मेरा अभाव हो जाने पर तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? माता ने कहा, संजय ऐसी मुंह भरी बातें मत करो। समझदारों की सब अवस्थाएं धर्म और अर्थ के लिए होती है। तेरा जीवन धर्म के लिए है तो अच्छा है, लेकिन तू यदि प्राण बचाने के लिए जीता है तो ये मृत्यु से भी खराब है। इस समय यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा शरीर या शत्रु के प्रति कड़ाई से काम न लिया तो तेरा बड़ा भयंकर तिरस्कार होगा, अपयश मिलेगा। तेरा अपयश तेरे सिर पर नाच रहा है। उस समय यदि मैं तुझसे कुछ न कहूं तो लोग मेरे प्रेम को पशुओं का प्रेम कहेंगे, ऐसा प्रेम तो पशुओं में होता है। अतः तू सत्पुरुषों से निंदित मूर्खों के मार्ग को छोड़, प्राणों का मोह हटा। मुझे तू तभी प्रिय लगेगा जब या तो युद्ध भूमि में विजय को प्राप्त होगा और या फिर मैं ये सुनूंगी कि मेरा बेटा युद्ध भूमि में काम आ गया, मेरे लिए प्रसन्नता और गौरव का दिन होगा। पुत्र फिर कहता है, माताजी बात तो ठीक है, किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। भूल करके भी अपने पुत्र की मौत को कौन मां अपने मुंह से कहेगी? जरा मेरे पर दया दृष्टि रखो। माता ने कहा, कायर तू मुझे अपना कर्तव्य बता रहा? तू तो अपना कर्तव्य छोड़ा हुआ और मुझे कर्तव्य बताता? पुत्र ने कहा, माताजी न तो मेरे पास कोई खजाना है न कोई मेरा सहायक है, मेरी जीत कैसे हो सकती है? मेरी तो मृत्यु ही तो होगी और मृत्यु के हो जाने के बाद तो फिर संसार में रखा ही क्या है? बुद्धिमान आदमी तो हर प्रकार से जीने की चेष्टा करता है। माता बोलती है, अभी तक भी तुम्हारे मेरे विचार तुम्हारे अंदर उतरे नहीं? ये धन संपत्ति पहले न होकर पीछे होते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार धन संग्रह की नादानी मत करो, बुद्धिमान पुरुषों के धर्मानुसार प्रयत्न करो। कर्मों के फल के साथ तो सदा ही अनित्यता लगी रहती है, कभी उसका फल मिलता है कभी नहीं मिलता है। पर तुझे अपने जीने से इतना क्या प्यार है? ऐसा करने से तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। जाओ, मेरी आज्ञा है, पुरुषार्थ दिखाओ, बुद्धिबल दिखाओ, उत्साह बढ़ाओ और युद्ध भूमि के अंदर जाकर अपने शत्रुओं के मनोबल को तोड़ो और अपने मनोबल को बढ़ाओ। मेरा ये राज्य शत्रु रूप जल में डूब गया, इसमें मेरा उद्धार करना तुम्हारा काम है, नहीं तो मैं यहां प्राण दे दूंगा। पुत्र ने कहा, माताजी आपके बोलने से मेरे मन में बड़ा उत्साह आया है। मैंने जो बीच बीच में कायरों की सी बात कही थी वो केवल आपसे पुरुषार्थ की बात सुनने के लिए कही थी। आपके वचन अमृत के समान बहुत अच्छे लगे हैं, मैं बड़ा उत्साहित हुआ हूं और अब मैं या तो विजयी होकर मुंह दिखाऊंगा और या फिर मेरे प्राणों को युद्ध भूमि में गया हुआ ही समझने का समाचार सुनेंगे, तीसरी कोई अवस्था नहीं होगी। मां ने कहा, बेटा बस यही मैं तुमसे चाहती हूं। कुंती कहती है कि हे कृष्ण, ऐसे माता के बाणों के वाग बाणों से बिंधा हुआ वो संजय युद्ध भूमि में चला गया और वहां जाकर उसने नया इतिहास बनाया, ऐसी शूरवीरता से युद्ध किया कि उन्हीं शत्रुओं को उसने परास्त कर दिया। और जब अपनी मां के पास आया तो मां ने बड़े स्नेह से उसको छाती से लगाया, अब तू मेरा पुत्र है। केशव तुम अर्जुन से कहना कि जिस समय तेरा जन्म हुआ था उस समय आकाशवाणी हुई थी, हे कुंती, तेरा ये पुत्र इंद्र के समान होगा। ये भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा। इस सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा। इसका यश स्वर्ग लोक तक फैलेगा। श्री कृष्ण की सहायता से कौरवों के रूप में आए हुए सब दानवों का संग्राम में नाश करेगा और अपने पैतृक अंश को प्राप्त करके रहेगा और फिर अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। हे कृष्ण, मैं इस आकाशवाणी को जब भी याद करती थी मैंने सोचा ये आकाशवाणी कब पूरी होगी। जिनके लिए 12 वर्ष वनवास में हो, 1 वर्ष अज्ञातवास में, उनके लिए कभी ये दिन आएगा क्या? अब ये दिन आ गया है। कृष्ण, तुम अर्जुन और भीमसेन से कहना कि क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे करने का ही समय आ गया है। द्रौपदी से कहना कि बेटी, तुम्हारा वो दीर्घन मेरे हृदय में बराबर खटकता जा रहा है। तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है, ये तेरे योग्य ही है। नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो। कृष्ण,
मुझे राज्य जाने का, जुआ में हारने का या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है, किंतु मेरी युवती पुत्रवधू ने सभा भवन में रो रो करके जो दुर्योधन के कुवचन सुने उससे मेरी मन की पीड़ा दूर नहीं हो रही है। कृष्ण, वे भीम और अर्जुन के लिए भी बड़े अपमानजनक शब्द थे। वो शब्द उनको बार बार याद दिलाने, द्रौपदी, पांडव और उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल क्षेम पूछना और मेरा भी कुशल क्षेम सुना देना, लेकिन मेरी अंतर पीड़ा को उनसे मत छिपाना। अब तुम जाओ, पुत्रों की रक्षा करो, यही तुम्हारा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने गदगद भाव से कुंती को प्रणाम किया। भगवान के नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे, कुंती के नेत्रों में वीरता के आंसू बह रहे थे। भगवान ने उनको परिक्रमा की और वे बाहर आए, भीष्मादि प्रधान प्रधान कौरवों को विदा किया और भगवान ने कर्ण को कहा, कर्ण, तुम मेरे साथ रथ में बैठो। कर्ण को अपने रथ में बैठाया, सात्यकी के साथ फिर आगे चल दिए। भगवान के जाने पर कौरव लोग आपस में मिलकर उनके विषय में बड़ी बड़ी बातें करने लगे। नगर से बाहर जाकर श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ कुछ गुप्त बातें की, फिर उसे विदा कर दिया, घोड़े हाँक दिए और इतने तेजी से चले कि लंबे मार्ग को थोड़े समय तक तय करके उपप्लव्य नामक स्थान पर पहुंच गए। जन्मेजय ने कहा कि कृष्ण का और कर्ण का आपस में क्या संवाद रहा होगा। वैशंपायन जी कहते हैं,
कुंती ने श्री कृष्ण को जो संदेश दिया था उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य ने पहले ही पहले दुर्योधन से कहा, दुर्योधन कुंती का जीवन बड़ा तपोमय जीवन है, कुंती ने आज तक कभी क्रोध नहीं किया है, लेकिन आज बड़े क्रोध में भरकर कुंती ने कृष्ण को जो अर्थ और धर्म की आज्ञा दी है वो तुम्हें ध्यान देने चाहिए। कितने बुद्धिमान हैं कृष्ण, पांडव लोगों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर आए और तुमने उस कृष्ण का इतना अपमान किया। वे अब अपना आधा राज्य लिए बिना शांति से नहीं बैठेंगे, क्यों कि उनको दो दो आज्ञाएं मिलेंगी, मां की आज्ञा और कृष्ण की आज्ञा। इसलिए तुम अपने मां बाप और हितेशियों की बात मान लो, संधि कर लो, बड़ा अच्छा समय है। यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं जस्ती है तो रणांगण में भीमसेन का भीषण संघात और गांडीव की भीषण टंकार हमारी बातों को याद दिलाएगी। दुर्योधन उदास हो गया, मुंह नीचा कर लिया, भुएं सिकोड़कर टेढ़ी निगाह से देखने लगा। उसको उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपस में एक दूसरे की ओर देखकर बात करने लगे। भीष्म ने कहा, द्रोणाचार्य जी, युधिष्ठिर सदाई हमारी सेवा में तत्पर रहता है, वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, ब्राह्मणों का भक्त है, सत्यवादी है, उसके साथ हमें युद्ध करना पड़ेगा, इससे बढ़कर और हमारे जीवन का दुर्दिन क्या होगा, ऐसे पुत्र के साथ युद्ध करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा मैंने अर्जुन में अधिक प्रेम किया। अर्जुन बड़ा विनीत है, वह मेरा बड़ा सम्मान करता है, लेकिन अब क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर पुत्र से भी बढ़कर प्रिय अर्जुन से मुझे युद्ध करना पड़ेगा। धिक्कार इस क्षात्र वृत्ति को। दुर्योधन, तुम्हें कुरुवृद्ध भीष्म, मैं, विदुर, कृष्ण सभी समझाकर हार गए, पर तुमको अपनी बात नहीं, तुम्हें हित की बात नहीं सुहाती। देखो, हम तो बहुत दान हवन स्वाध्याय कर चुके, हमने धनादि देकर ब्राह्मणों को भी खूब तृप्त किया, हमारी अब आयु भी बीत चुकी है, इसलिए हमने तो जो करना था सो कर लिया, किंतु पांडवों से बैर ठान कर तुम बड़ी विपत्ति भोगोगे, कौन सा तुमको इसमें लाभ मिल रहा है, छोड़ो इस विचार को, करो संधि, अपने पुत्र मंत्री और सेना का पराभव न कराओ। जनमेजय ने फिर कहा, हे वैशंपायन जी, मैं कृष्ण और कर्ण की बात सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा कि जब कर्ण को रथ में बैठाकर भगवान हस्तिनापुर से बाहर लाए तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े मधुर शब्दों में और धीरे धीरे कर्ण को समझाते हुए कहते हैं, हे कर्ण, तुम तो वेद वेत्ता ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करने वाले हो, तुमने ब्राह्मणों से बड़ा भारी परमार्थ तत्व भी समझा है, पर मैं आज तुम्हें गुप्त बात कहना चाहता हूं। कर्ण, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मां का नाम क्या है? देखो, तुम अपने को राजा का पुत्र मानते हो, नहीं, तुमने कुंती की कन्यावस्था में उसके गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए धर्मानुसार तुम पांडु के पुत्र हो, शास्त्र दृष्टि से युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, तुम्हें राज्य का अधिकार मिलने वाला है, तुम्हारे पितृ पक्ष में पांडव है, मातृ पक्ष में यादव है, तुम मेरे साथ चलोगे, पांडवों को ये मालूम हो जाए कि तुम युधिष्ठिर से पहले उत्पन्न हुए कुंती के पुत्र हो, फिर देखो पांचों पांडव पांचों द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु कैसे तुम्हारे चरण छुएंगे, तुमको घेर लेंगे, तुम्हें स्नेह से सिंचित कर देंगे। पांडवों के पक्ष लेने वाले जितने राजा राजपुत्र वृष्णि अंधक वंश यादव सब तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे। कारण मेरी इच्छा है तुम धौम्य मुनि के साथ आज यज्ञ करो। वे चारों वेदों की ज्ञाताएं ब्राह्मण लोग तुम्हारा अभिषेक करें और हम सब उस अभिषेक को देखें, और मैं उस अभिषेक में ये घोषणा करूं कि महाराज युधिष्ठिर के सबसे बड़े भाई ये कर्ण है। उस समय आप राजा होंगे, युधिष्ठिर आपका युवराज होगा, हाथ में श्वेत चंवर लेकर तुम्हारे पीछे पीछे बैठेंगे, तुम्हारी मस्तक पर भीमसेन बड़ा भारी श्वेत छत्र लगाएंगे, अर्जुन रथ हांकेंगे, अभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी गोद में बैठेगा, तथा नकुल सहदेव द्रौपदी के पांच पुत्र पांचाल राजकुमार और महारथी शिखंडी सब तुम्हारी जय जयकार करते हुए तुम्हारे पीछे चलेंगे। एक नया इतिहास बनेगा, एक नई झांकी मिलेगी और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। आज मैं युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई मानता हूँ, उनके चरण छूकर प्रणाम करता हूँ, उनके सामने मैं भी तुमको अपना बड़ा भाई मानकर उनको प्रणाम करूंगा। इस प्रकार अपने भाई बंधुओं के बीच में रहो कर्ण, और जप होम तरह तरह के मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करो। बड़ी मधुर वाणी सुनकर कर्ण ने कहा, केशव आपने स्नेह मित्रता के नाते और प्रेम के नाते मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन आप ये मत समझना कि मुझे ये पहले से मालूम नहीं है कि मैं कुंती का बेटा हूं। मुझे बहुत पहले से मालूम है, मैंने आज तक कभी अपने को कुंती का पुत्र होने का रहस्य खोला नहीं है। मैं मानता हूं धर्मानुसार मैं युधिष्ठिर का बड़ा भाई हूं, पांडु का पुत्र हूं। कुंती ने कन्यावस्था में सूर्यदेव के द्वारा मुझे गर्भ में धारण किया था और फिर उन्हीं के कहने से त्याग भी दिया था। उसके बाद अधीरथ सूत मुझे देखकर घर ले आए, बड़े स्नेह से मुझे अपनी स्त्री राधा की गोद में दे दिया। उस समय मेरे स्नेह के कारण राधा के स्तनों में दूध आया और उसी ने उस अवस्था में मेरा मलमूत्र उठाया। अतः धर्मशास्त्र को जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोप कैसे कर सकता है? इसी प्रकार अधीरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही मानते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदा अपना पिता ही समझता हूं। उन्होंने मेरे जात कर्म आदि संस्कार करवाए, ब्राह्मणों द्वारा वसुषेण मेरा नाम रखवाया, युवावस्था होने पर उन्होंने सूत जाति की कई स्त्रियों से मेरा विवाह करवाया। अब उनसे मेरे बेटा पोता हो गए, उन स्त्रियों में मेरा हृदय भी प्रेम बस काफी फंस चुका है। अब मैं संपूर्ण पृथ्वी या सोने की ढेरिया मिलने से अथवा किसी प्रकार के हर्ष या भय से इन संबंधियों को छोड़ तो नहीं सकता ना। दुर्योधन ने मेरे भरोसे सारे शस्त्र उठाने का दुस्साहस किया है, इसी से इस संग्राम में मुझे अर्जुन के साथ वीरत युद्ध के लिए नियत भी किया है। मैं मृत्यु बंधन भय और लोभ के कारण दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता केशव। अब यदि मैंने अर्जुन के साथ वीरत युद्ध न किया तो इससे अर्जुन और मेरी दोनों की अपकीर्ति होगी। हे मधुसूदन, अब मैं भी आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। ये जो आपकी और हमारी गुप्त बात हुई है ये बस यहीं तक रहनी चाहिए। ये किसी को पता न चले। यदि धर्मात्मा जितेंद्री सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर को इस बात का पता लग गया कि कुंती का प्रथम पुत्र कर्ण है, तो फिर वे राज्य को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे और मुझे वह विशाल साम्राज्य दे देंगे और ये विशाल साम्राज्य मैं दुर्योधन को दे दूंगा, लेकिन मैं ऐसा भीतर से चाहता नहीं हूं। मेरी इच्छा है कि जिनके नेता आप हैं, जिनके योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर इस पृथ्वी पर शासन करें। हम चले जाएं, लेकिन इनका शासन रहना चाहिए। मैंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के विषय में जो कटु वाक्य कहे हैं, कृष्ण मेरा हृदय सदा उसके लिए रोता रहता है। मैं इसका खूब प्रायश्चित करता हूं। कृष्ण, जिस समय आप मुझे अर्जुन के हाथ से मरा हुआ देखेंगे, जब भीषण गर्जना करते हुए भीमसेन दुशासन का रक्त पिएंगे, जिस समय पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म का वध करेंगे तथा महाबली भीमसेन दुर्योधन को मार देंगे, उस समय राजा दुर्योधन का ये रणयज्ञ समाप्त हो जाएगा। हे केशव, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र है। वहां ये सारा वैभवशाली क्षत्रिय समाज शस्त्राग्नि में स्वाहा हो जाएगा। आप इस संबंध में ऐसा करें जिससे सब क्षत्रिय स्वर्ग को प्राप्त करें। क्षत्रिय का धन तो संग्राम में मरने का है, पराक्रम दिखाने का है। अतः आप हमारे विचार को गुप्त रखना। जब तक मैं जीऊं तब तक आप ये बात किसी से मत कहना। भगवान कृष्ण हंसे, मुस्कुराए, कहने लगे, कर्म, तो क्या तुम्हें ये राज्य प्राप्ति का उपाय मंजूर नहीं है? क्या तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का भी शासन नहीं करना चाहते? इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि अंतिम विजय पांडवों की होगी। अच्छा, तुम यहां से जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य से कहना, ये महीना बड़ा अच्छा है, सब फलों को देने वाला है, मधुमक्खियां कम है, कीचड़ सुखा हुआ है, जल में स्वाद है, विशेष गर्मी और ठंडक भी नहीं है, सुखमय समय है, आज से सातवें दिन अमावस्या होगी, उस दिन युद्ध आरंभ करो, वहां और भी जो जो राजा लोग आवे उन सबको ये समाचार सुना देना। तुम्हारी इच्छा युद्ध करने की है तो मैं उसी का प्रबंध कर देता हूं। दुर्योधन के अधीन जो भी राजा और राजपुत्र हैं, वे शस्त्रों से मरकर उत्तम गति को प्राप्त होंगे। कर्ण ने फिर मुस्कुराते हुए कृष्ण से कहा, हे महाबाहु कृष्ण, मैं तुम्हारा हृदय से आदर करता हूं। आपको मालूम है कि मैं किसी प्रकार पांडवों के पक्ष में होने वाला नहीं हूं, फिर आप जानबूझकर मुझे मुंह में क्यों फंसाना चाहते हैं? ये तो पृथ्वी के संहार का समय है। इस समय शकुनी, मैं, दुशासन और धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन तो निमित्त मात्र हैं। आप स्वयं हम सबका संहार देखना चाहते हैं। दुर्योधन के अधीन जो राजा और राजपुत्र भी सब शस्त्राग्नि में भस्म होकर यमराज के घर जाने वाले हैं, इस समय बड़े भयानक स्वप्न और भयंकर शकुन उत्पात हो रहे हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्पष्ट ही दुर्योधन की हार युधिष्ठिर की विजय है। पांडवों के हाथी घोड़े सब प्रसन्न है, मृगदाएं होकर निकल रहे हैं, उनका तो विजय विजय का डंका बज रहा है। कौरवों के बाई होकर मृग निकलते हैं, पराजय की सूचना है, फिर भी आप मुझे मुंह में क्यों डालते हैं? कृष्ण ने कहा, कर्ण, निस्संदेह ये पृथ्वी विनाश के कागार पर है, परंतु मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे मुंह से जो ये शब्द निकले मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कर्ण ने कहा अच्छी बात है, अब हम विदा होते हैं, अब आपके दर्शन युद्ध भूमि में होंगे, बच गए तो बाद में होंगे, नहीं तो फिर स्वर्ग में होंगे। युद्ध में तो आपके दर्शन किए बिना मैं रहूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण का खूब गाढ़ आलिंगन किया कर्ण ने, और उसके बाद भगवान विदा हुए तब तक कर्ण कृष्ण को देखते रहे, और जब कृष्ण का रथ दूर चला गया तब कर्ण वापिस हस्तिनापुर की ओर लौट चला, भगवान पांडवों की तरफ चल पड़े।
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण।